ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च दानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षिजे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय भक्त्याविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनानुपस्मि आज आप लोगों का परम सौभाग्य है कि लगभग 7 दिनों से आप लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं और कर रही हैं। कृष्णचंद्र ही कलियुग में श्रीमद् भागवत के रूप में अवतीर्ण हैं। कृष्ण और भागवत में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण का दर्शन करना और भागवत का श्रवण करना एक ही बात है, किंतु इसको भी समझिए, जैसे कृष्ण को तो कंस ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, जरासंध ने देखा, बहुत से लोगों ने देखा, किंतु देख करके कृष्ण को उनको आनंद नहीं हुआ। कृष्ण को उन्होंने अपना शत्रु माना, पुतना अगासुर बकासुर कृष्ण को मारने के लिए गए, तो कृष्ण के दर्शन से ही नहीं कुछ सब कुछ हो जाता। ऐसे भागवत का श्रवण करने से ही नहीं होगा, उनकी सेवा की भावना से उसको हम सुनेंगे। परीक्षित महाराज जी के सभा में जब उनके 7 दिन में मृत्यु आने वाली थी, तो वहां पर बड़े बड़े ज्ञानी कर्मी योगी तपस्वी ऋषि मुनि गृहस्थ सब आए, अकेले 60,000 सब ऋषि लोग थे, सब लोग वहां पर पधारे, सबने सुना, किंतु परीक्षित की जो गति हुई उन लोगों की वो गति हुई, आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म में गोकर्ण और धुंधकारी की बात सुनी होगी। धुंधकारी के मर जाने के बाद में गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया, एक बांस 7 गांठ वाले उसको बंद कर दिया उसमें और सुनाया, प्रतिदिन उसकी एक एक गांठ फट जाती थी और अंतिम दिन में उसकी मुक्ति हो गई और विमान में चढ़ करके वो बैकुंठ लोक को गया, किंतु और जो वक्ता और श्रोता दोनों सभी लोग रह गए, हजारों लाखों लोग, उनका किसी को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? केवल कान से सुन करके इधर से निकाल देने से वो भागवत का सुनना नहीं हुआ, सुन करके उसके जीवन में हम अपने को प्रतिष्ठित करेंगे, उसे हम मानेंगे, उसके जीवन उसके उपदेशों को अपने जीवन में लाएंगे, तब तक कुछ उसमें कार्य होगा। भगवान जैसे वंचाकल्पतरु हैं, श्रीमद् भागवत भी वैसे वंचाकल्प, जो कुछ भी कोई कामना करेगा उसकी समस्त कामनाओं को भागवत पूर्ण कर देंगे, उसके श्रवण करेंगे। यदि कोई चाहे हमें पुत्र हो, धन हो, स्वर्ग हो, संसार के सुख हो, शांति हो, सभी कुछ वो दे सकते हैं, किंतु इससे भी अधिक दयालु ये श्रीमद् भागवत या कृष्ण हैं। हम 20 मांगने पर भी वो 20 नहीं देंगे, इसलिए वो लोग मूर्ख हैं जो स्त्री पुत्र परिवार संसारिक सुख के लिए भागवत पढ़ते और सुनते हैं। परीक्षित महाराज जी को जबकि ये अभिसंपात हुआ, सातवें दिन तेरी सांप से काटने से तू मरेगा, घर बार छोड़ दिया। उनके अंदर में क्या कामना रह गई? घर बार, स्त्री पुत्र परिवार सब तो छोड़ करके गए, और उनके गुरु भी ऐसे मिल गए। कौन? सुखदेव गोस्वामी जी। कैसे? जिनको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भागवत पाठ होगा तो हमको कपड़े कुछ चढ़ाएंगे लोग, उनको जरूरत थी तो पहनते ही नहीं। भोजन करना तो वो तो भोजन तो करते ही नहीं थे। पानी पीना, पानी को उनको प्यास नहीं थी। नंग धड़ंग वहां पर उपस्थित हुए। जिसको कोई भी कामना नहीं है, बस एक कामना है, कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। और सुखदेव गोस्वामी का भी वैसे, परीक्षित महाराज जी का वैसे। ऐसे योग्य व्यक्ति लोग यदि भागवत को सुनेंगे तो उनको इसी जन्म में ही भगवान के चरणों में प्रेम होगा। इससे बढ़कर के जगत में और कोई चीज नहीं है। भागवत श्रवण करने का एकमात्र यही फल है। जो मूर्ख लोग हैं वो तो धन जन पुत्र परिवार मुक्ति और स्वर्ग की कामना भागवत से करेंगे। आज बुद्धिमान है, परम बुद्धिमान है, भागवत के चरणों में वही प्रार्थना करेंगे। क्या प्रार्थना करेंगे? जो भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। गोपियों ने किस प्रकार से कृष्ण को अपना लिया और उनकी सेवा प्रेम से की, वैसे ही सेवा हमको मिले। इसके अतिरिक्त कोई भी चीज की कामना रहे तब तो हो जाएगा। इसलिए आप लोग उस रूप में पढ़ेंगे, सुनेंगे। हम लोग प्रणामी हमें आ जाएगी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर भागवत पाठ करने के लिए नहीं आए हैं। और सब जगहों में होता है प्रणामी के लिए, चढ़ावा आएगा, पहले से ऐलान कर देते हैं जो रुक्मिणी का विवाह में इतना खर्च होगा और सुदामा जी के चरित्र में ये खर्च होगा और अन्नकूट में ये खर्च होगा। हम लोग के लिए कोई खर्च नहीं है, बस आप लोग हरी कथा सुनिए बस, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। न हमको कुछ चाहिए, बस चाहिए यही आप लोगों का कृष्ण के चरणों में मति हो, जो भागवत श्रवण करने का फल है। और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। यदि एक आदमी भी, इतने आदमी जो सुन रहे हैं उसमें प्याज लहसुन मांस मछली मदिरा सिगरेट धूम्रपान सब छोड़ करके गले में तुलसी लेकर के और भगवान का भजन करना आरंभ कर दे, एक आदमी भी इनमें से, तो हम समझेंगे कि हमारा भागवत कहना और आप लोगों का भागवत सुनना ये सार्थक हुआ। और यदि ऐसा नहीं कर सकेंगे तो समझेंगे ये आप लोग ऐसे ही मनोरंजन के लिए जैसे आते हैं ऐसे मनोरंजन किया और चले गए। भागवत सुनने का ये फल रहेगा। संसार की जितनी बुरी चीजें हैं उनको छोड़ करके, अच्छी चीजों को ग्रहण करके, माता पिता का आदर करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, इस तरह से हम लोग इसको सुनने का ये फल है। हमारे व्यास जी, आप लोगों ने सुना होगा, वेद का विभाग किया, उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे जिसमें स्त्री शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय सन्यासी सबका अधिकार है। वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े, बहुत कम लोग ऐसे, जैसे कि प्राचीन काल में कुछ थी, वैसे यदि कोई हो तो उसके लिए अधिकारी है, नहीं तो शूद्र माने जो सब समय सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है वो वेद का अधिकारी नहीं। इसी तरह से किंतु महाभारत में सबका अधिकार है, गीता में सबका अधिकार है, ऐसे ग्रंथ लिखे। वेदांत समस्त उपनिषदों का सार उन्होंने लिखा, पुराणों को उन्होंने प्रकाश किए, किंतु फिर भी उनका चित्त में खेद था, चित्त प्रसन्न नहीं था। समस्त धर्म संप्रदाय के गुरु व्यास जी हैं, सबको शिक्षा देने वाले, सब कुछ उन्होंने लिखा, किंतु उनका चित्त खिन्न रहा, प्रसन्न नहीं हुआ। इतने में गुरु जी आ गए उनके, वो गुरु जी नारद जी। गुरु जी से उन्होंने पूछा, जी हमारा मन प्रसन्न नहीं रहता, कहने तुमने तो सब प्रकार की शिक्षाएं विश्व को दिया और जगत के लोग तुमको गुरु कहते हैं, तो तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। मैं वैद्य हूं परमार्थ का, इसलिए मैं बतलाता हूं, सुनो, तुमने ऐसा किसी ग्रंथ में कृष्ण की आराधना की बात नहीं लिखी, तुमने कृष्ण को ये मैं बतलाया जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर कृष्ण हैं, तुमने ऐसा कहा कहीं? दुर्गा जी सबसे श्रेष्ठ हैं, कभी शंकर जी सबसे श्रेष्ठ हैं, कभी बतलाया कि ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, किसी शास्त्र में ऐसा लिख दिया गणेश जी की पूजा नहीं करने से धनजन पुत्र परिवार नहीं मिलेगा, कभी संतोषी मैया की बात आपने लिख दी, लोग को भ्रम में डाल दिया, आपने स्पष्ट नहीं बतलाया जो शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, समस्त देवता लाखों आराधना करके भी जिन कृष्ण का दर्शन नहीं पा सकते, उनकी कृपा नहीं पा सकते, उस कृष्ण का आपने लीला चरित्र नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा कि गोपियां कैसे कृष्ण की आराधना करती हैं। जो यशोदा मैया को महाभागा बतलाया गया, नंद महाराज को महाभाग बतलाया गया, उनके समान बड़ भागी कोई नहीं कि अपनी गोदी में परब्रह्म को जो इस जगत की सृष्टि करने वाले हैं उन ईश्वरों को भी ईश्वर हैं और उनको अपनी गोदी में ले रहे हैं नंद बाबा, जो यशोदा मैया गोदी में लेकर के अपना स्तन दान कर रही हैं, करोड़ों यज्ञों के फल से जो तृप्त नहीं होते, वो ललक रहे हैं अपनी यशोदा मैया का दूध पीने के लिए, यशोदा जी कहे नहीं तुम जाओ यहां से, तुम्हें गोद नहीं लूंगी, तुम्हें दूध नहीं पिलाऊंगी, तू नटखट हो गया है, तू घरों में जाकर के चोरी करता है मक्खन और सब ओलाहना मुझसे देती है, तब मच कर, और वो ब्रह्म छटपट कर करके मिट्टी में लौटते हैं उनका दूध पीने के लिए। यहां पर आराधा कृष्ण आराधक बन जाते हैं और गोपियां बन जाती हैं आराध्य, मैया को खुश करने के लिए चेष्टा करते हैं, रोते हैं, जैसे बच्चों का अस्त्र होता है रोना, कृष्ण रो रो करके मैया की गोद में चढ़ना। यही नहीं, आपने ये तो नहीं लिखा कहीं जो समस्त जगत के आराध्य हैं, सब लोग जिस कृष्ण की आराधना करते हैं और वो राधा जी के चरणों में पैया पड़ते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए लाख चेष्टा करती हैं, आपने लिखा कहीं? नहीं लिखा। इसलिए वंदे नंद ब्रजे स्त्रीनां पाद रेणुम अभिक्ष्णसा हरि कथां जासा पुनाति भुवनत्र आशा महो चरण रेणुषा। सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण की वंदना नहीं कर रहे, गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना कर रहे। भागवत का प्रतिपाद्य विषय यह है, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जिस प्रेम के द्वारा मुग्ध होकर के कृष्ण उनके चरणों में क्षमा मांगते हैं राधा जी, राधा जी की प्रसन्नता करते हैं, इसलिए श्रीमद भागवत का प्रतिपाद्य ये सब चीजें। आपने तो कहीं नहीं लिखा ये सब, इसलिए आपका मन प्रसन्न कैसे हो? इसलिए कोई आजकल अभी नव दुर्गा का दिन शायद चल रहा है, आज अष्टमी है या नवमी, अष्टमी है ना, अष्टमी की पूजा होगी, सभी लोग इस पूजा को करें, किस लिए करते हैं, करते हैं किस लिए? दुर्गा जी का जन्म है या क्या है? ये है, उन्होंने महिषासुर का वध किया था, किस लिए महिषासुर का वध किया? बड़ा भारी पापी अत्याचारी था, जगत का जंजाल था, जगत के लोगों को त्रस्त कर रखा था, किसी को जीने नहीं देता था, देवताओं को भी त्राही त्राही लग गई उसके मारे में, जिसकी सुंदरी स्त्री को पाता उसी को पकड़ ले जाता अपने घर में, जिसका कोई धन देखता वो धन हड़प लेता, राज्य हड़प लेता, लोगों को मार डालता, इसे संसार के लिए त्रस्त थे, यहां तक कि शंकर जी भी उसका वध नहीं कर सके, ऐसा वीर था। दुर्गा जी ने उसका वध किया, इसलिए दुर्गा जी की आराधना होती है, किंतु ये दुर्गा जी जिसकी आराधना करती हैं वो कौन है, किसकी शक्ति से ये सब करती हैं? कृष्ण की आराधना से करती हैं, कृष्ण की ये छाया शक्ति हैं, मूल शक्ति राधा जी हैं, राधा जी की ये छाया हैं, वो जब इतना शक्तिशाली हैं तो राधा जी कितनी शक्तिशाली होंगी, ये मत समझें जी कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, गोवर्धन धारण किसने किया? उनकी शक्ति ने किया, वो शक्ति कौन है? इस शब्द को समझ करके राधा कृष्ण की यदि आप लोग उपासना करेंगी तो आपका सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। अन्यथा रावण ने लंका में दुर्गा जी की प्रतिष्ठा की थी और शंकर जी की, और उसी के बल पर उसको 10 शिर हुए थे और काटने से और बढ़ जाते थे, उसको मारने वाला पृथ्वी में कोई नहीं था। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश किया सीता जी का पता लगाने के लिए, तो लंकेशनी ये दुर्गा जी अपने एक रूप में थी, उन्होंने हनुमान जी को देख लिया। मशक समान रूप धरिणी, मशक माने मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया। किंतु वो ऐसी थी कि उसने पता देख लिया, कहे तू कहाँ जा रहा है? तो हनुमान जी बस खड़े हो गए, मैं जा रहा हूँ सीता देवी को मैया का पता लगाने के लिए। तो लंका में तुम कैसे घुस आए? हमारे इजाजत के बिना कोई नहीं घुस सकता, तो आप इजाजत दे दीजिए मुझे, मैं जाऊं। क्या मैं इजाजत नहीं दे सकता, आज्ञा नहीं दे सकता? अच्छा तो ठीक है, आप नहीं दे सकती तो ये उपहार आपको देता हूं, इस उपहार को लेकर के आप जरा भट जाइए। ऐसा करके एक मुंह का ऐसा मारा, पीठ पर गिर गई। गिर गए कहते अरे मुझे याद आई, भगवान ने हमसे कहा था जिस समय एक बंदर तुम्हें मारे और मूर्छा आ जाए तो उस समय लंका को छोड़ देना, अब लंका का भला नहीं है, रावण मारा जाएगा, उसके 1 लाख पुत्र मरेंगे, 1.25 लाख नाती मरेंगे, कोई दिया बत्ती देने के लिए नहीं रह जाएगा। तो शंकर जी की तो उपासना करता था, दुर्गा देवी की उपासना करता था, किंतु हुआ क्या, कोई वंश में रहा विभीषण केवल रहे और कोई नहीं रहा। इसलिए जो भगवान की सेवा करेगा, लक्ष्मी जी दुर्गा जी सभी लोग प्रसन्न हो जाए। दुर्गा जी को प्रसन्न करने का एक सस्ता सहज औषधि है, यदि उनके आराध्य को कृष्ण को राधा जी को प्रसन्न कर लिया जाए अपने आप प्रसन्न। दुर्गा जी किसी का सिर मांगती हैं और रक्त मांगती हैं, लोग बलि चढ़ाते हैं, ये सब गलत। यदि आप राधा कृष्ण की सेवा करेंगे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, इसका अतिरिक्त तो उनको प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आजकल ये सब चीजें ठीक रहनी चाहिए। ये जो अभी का दिन है, अभी 10वीं आ रही है, रामचंद्र जी को पता लगा हनुमान जी लंका से लौटे, और लौट करके उन्होंने रामचंद्र जी को सीता जी की मुद्रिका दी जो उनके हाथ से लिया। राम ने उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों में आंसू छा गए। तुमको कहां मिला? तो मैया ने दिया तुम्हें देने के लिए। इसके बाद में यह निश्चित हुआ कि अब लंका पर चढ़ाई करनी है, तो ये 9 दिन उनको निश्चित करने में लगे। 9 दिन उनको निश्चित करने में लगे, कैसे किस रूप में कैसी सेनाओं को संग्रह करके हम लंका में चढ़ाई करें। और विजयादशमी के दिन क्या किया, किष्किंधा से पंपा सरोवर जहां था, जहां राम लक्ष्मण रहते थे, वहां से समस्त सारी बंदरी बंदरों की सभा और रिछों की सब सेना को लेकर के आज के लिए कूच किया, विजय के लिए प्रस्थान किया लंका के लिए। इसलिए इसका नाम है विजयादशमी। इसके लिए विजय, लंका जी में को विजय करने के लिए, सीता जी को लाने के लिए ये आज विजय के लिए यात्रा की। असल में ये तो था, किंतु धीरे धीरे लोग महान स्वार्थी होते गए, भगवान की उपासना भूल करके अपने धन जन पुत्र परिवार के सुखी होने के लिए उन्होंने दुर्गा जी की उपासना करनी आरंभ कर दी और उधर में राम को भूल गए। इसलिए इन दिनों में रामायण का पाठ होना चाहिए, राम की पूजा होनी चाहिए, और उनके भक्त दुर्गा जी को भी लीजिए, कोई हानि नहीं है। इस तरह से हम अपने जीवन को भगवान के भजन में प्रतिष्ठित करेंगे। तो मैं भागवत के संबंध में बतला रहा था, व्यास जी को नारद जी ने कहा तुमने ये सब चीजें लिखी नहीं, इसलिए तुमको शांति नहीं मिल रही है, तुम्हारा चित्त प्रसन्न नहीं है। इसलिए तुम स्पष्ट रूप में लिखो ये समस्त भगवानों के भी, समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर आदि अनादि ये कृष्ण है, उनकी शक्ति राधा जी हैं, इसका वर्णन करो। उन्होंने कहा जी मैं कैसे वर्णन करूं? अच्छा तो देखो मैं बतलाता हूं, भक्ति के योग के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करो। कैसे भक्ति जो? भगवान का नाम कलयुग में, कलयुग केवल नाम, नाम करते करते तन्मय हो जाओ, भगवान का चिंतन करते करते उनके चरणों में अपने को समर्पण कर दो और उन पर छोड़ दो। देखो तुम्हारे ऊपर मैं कृपा करूं, जब तक अपना और ये मैं हूं मेरा हूं तब तक नहीं, उनके ऊपर मैं संपूर्ण रूप से छोड़ो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर में निर्भर करो और तब ददामि बुद्धि योगम ते जैन माम भूयन्ति, तब मैं बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि योग माने भक्ति योग, और उसके द्वारा तुम हमको पा सकोगे। जब तक ऐसा नहीं करोगे, उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्ण, उन्होंने पूर्ण पुरुष को देखा। किसको देखा? कृष्ण को देखा, यशोदा मैया को देखा, नंद बाबा को देखा, सारे ब्रजवासियों को देखा, राधिका जी सहित समस्त गोपियों को देखा और बाल्य से लेकर के द्वारका लीला को समस्त हाथ में रखे आमा की भांति उन्होंने दर्शन किए और उसी को श्रीमद् भागवत में वर्णन किया। जो लोग भगवान को भूलकर संसार के 84 में पड़ जाते हैं, फेर में पड़ जाते हैं, वो माया उनको पकड़ लेती है और जन्म मरण के चक्कर में लगा देती है। ठीक है जी। और जो लोग संसार को दुखमय समझ कर, अभी कैसे दुख समझ करके, अच्छा यहां पर सब 70 वर्ष से कोई बूढ़ी है अधिक या बूढ़ा, वो संसार को समझ रहा होगा कुछ कुछ, कितना सुख है। अब बूढ़ी बुढ़ापा अवस्था है और यदि कह दिया तुम 100 वर्ष और जियो, कहा जी प्रभु हमको जल्दी से ले ले, क्यों? बहू और लड़के आदर नहीं करेंगे, नाती आदर नहीं करेंगे, ताना मारेंगे, शरीर अच्छा भोजन मांगेगा किंतु हजम नहीं कर सकेगा, धीरे धीरे शरीर एकदम जरट हो जाएगा। इसलिए इसमें जीवन में सुख नहीं है। आप जिसके लिए भलाई करते हैं वो आपके लिए बुराई करेगा, जरूर करेगा। इसलिए संसार को दुखमय जान करके उससे उपरत होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। तो ये जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो इस संसार को छोड़कर के भगवान के चरण कमलों में, बैकुंठ में अथवा गोलोक वृंदावन में नित्य स्थिति होती है और आनंद उपभोग करते हैं। और जो लोग भगवान को भूल करके इस संसार में आते हैं वो दुख प्राप्त करते हैं। इस तरह से उन्होंने भागवत को लिखा, जो देखा उसको लिखा। तो जो लोग ऐसा समझ करके भागवत को सुन करके, जो लोग प्रहलाद महाराज की तरह भगवान का भजन करें, अभी प्रहलाद महाराज जी का जीवन चरित्र सुना होगा, उसके पहले आप लोगों ने सुना होगा पुरंजन का उपाख्यान, भवाटवी का उपाख्यान, कपिल देवहूति का संवाद, क्या चीज है? एक कोई राजा, बड़ी सुंदरी स्त्री और अच्छे बच्चे, बड़ा अच्छा महल, किंतु वो तृप्त नहीं हो सका और संसार में इन चीजों को भोग करने के लिए कोई अधिक अच्छे महल में जाना चाहता था। वन में पहुंचा और वहां उसको एक बड़ा सुंदर महल मिला 9 द्वार का और उसमें बड़ी सुंदरी एक पत्नी भी मिली। नहीं मत जलाओ, मत जलाओ, ये सब उसको मिली किंतु उसे सुख नहीं हुआ। आपने विस्तार पूर्वक सुना होगा ये संसार से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ये सब बातें हैं। तो भागवत सुन करके विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, उसने भागवत नहीं सुना। सीधी सी बात है, भागवत को सुन करके संसार के पचड़े से आप लोगों को वैराग्य नहीं हुआ और संसार करेंगे। हमारा एक बेटा है, 5 बेटे हमारे हों, 10 बेटे हों, धृतराष्ट्र जैसे 100 बेटे हों, क्या होगा? सोने की लंका बन जावे ही तो क्या होगी? इसलिए संसार से वैराग्य और असल में उसको भगवान के चरण में प्रीति हो। यदि प्रीति नहीं है तो प्रीति वो कैसे होगी? भागवत में ये सब वर्णन किया गया है। कपिल देवहूति का संवाद आपको इन्होंने सुनाया होगा, जन्म से लेकर मरण तक के में जीव की क्या दशा होती है जो भगवान को भूलते हैं, ये बतलाया होगा। मैया के पेट में सिर नीचा पैर ऊपर कस करके बांध कर पीप रक्त और गंदी टट्टी के अंदर में फंसा रहता है। भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु निकालो इस नरक से, वो साक्षात नरक। अभी यदि आपको कोई ठूस करके उसमें बांध करके डाल देते, 1 मिनट में मर जाएंगे। ऐसी ऐसी घोर दशाएं होती हैं। और फिर जहां जन्म होता है वो माता और पिता और बहन के गोदी में खूब हंसता उछलता कूदता है, पढ़ता लिखता व्यवसाय वाणिज्य में फंस करके असल में भगवान का भजन भूल जाता है, ये भी सुनाया होगा। इसके बाद में और सब उपाख्यान बतलाए गए हैं, ये सुनाया होगा। ये सबको समझ करके करने की चेष्टा ऐसा करेंगे। इसके बाद में दशम स्कंद में पुतना को कृष्ण ने कैसे मारा, किस प्रकार से उन्होंने जन्म लिए, तृणावर्त अगासुर बकासुर इत्यादि का वध किया। हमारे अंदर में ये सब चीजें हैं, अगासुर बकासुर, यस, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, ये सब असुर हैं। यदि आप कृष्ण की शरणागत होंगे तो बलदेव प्रभु जी गुरु के रूप में, गुरु कौन है? बलदेव प्रभु जी अखंड गुरु तत्व है। जहां भगवान का शरणागत होंगे, हे प्रभु मैं भजन नहीं कर सकता, हमारे अंदर में बहुत से अनर्थ हैं, बलदेव प्रभु जी गुरु के रूप में प्रकट होकर के तुम्हें शिक्षा दे करके दीक्षा दे करके भगवान के चरणों में लगा देंगे। आपने सुना होगा धेनुकासुर, धेनुकासुर माने गधा, धेनु माने गधा। गधा क्या? भगवान को भूल जाना ही ये गधापन है। और संसार में गधा क्या करता है? लोगों के गंदे कपड़े पीठ पर लेकर के घाट तक जाता है और उसे खूब अच्छी तरह से लाद देते हैं। यहां तक कि ईंट ढोने वाले लोग गधों को 4 ईंटों पर खड़ा कर देते हैं, खच्चर जिसको कहते हैं, और उस पर लाद देते हैं ईंटा। लाते लाते जब ईंट टूट जाए तो समझो जैसे ये पूरा भार हो गया और उसको लेकर के चलते हैं। जिस चीज को कपड़े ले जाता है वो अपने आप नहीं पहन सकता, गुड़ और चीनी ले जाता है घी, किंतु अपने आप नहीं खाता, केवल घर का कुत्ता नहीं, वो गधा घर से और घाट तक जाएगा अब फिर लौट आएगा। तो जो लोग भगवान का भजन नहीं करते हैं, ऐसे गुरु भगवान का भजन जो शिक्षा नहीं देते, वो सब गधे के समान हैं। जो कुछ है मेरे खाने के लिए भोजन करने के लिए है, इसलिए वो ताल के पेड़ों को बड़ी सावधानी से रक्षा करता और कोई भी भक्त और ब्रजवासी नहीं प्रवेश कर सकता था। कृष्ण और बलदेव जी गए, बलदेव जी ने उसके पैर पकड़ के मारकर उसे खत्म कर। ये अज्ञानता है, मूर्खता है। गुरु जी ऐसे हमारे हृदय में जो संसार की वासनाएं और कामनाएं हैं, ये गधे के समान है। गुरु जी इस प्रकार से उनको मार करके और अज्ञानता को दूर, कितना आधा घंटा हुआ है। इसी तरह से उन्होंने बसासुर इत्यादि का वध किया और इसके बाद में फिर मथुरा में आए, कंस का वध किया, चारुमष्टु का वध किया। इसके बाद में कुछ दिनों रहने के बाद में द्वारका की लीलाएं हुई। अभी उसका थोड़ा थोड़ा उसमें जो शिक्षाएं हैं मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। अभी एक कीर्तन थोड़ा सा करूं।
जय जय श्री। देखो कृष्णचंद्र जी देखने में तो छोटे से ग्वाल बाल हैं, यशोदा के लाल हैं, किंतु ब्रह्मांड के नियंता करने वाले लोगों को भी ये नियंता है। ये पूजा पाठ से, दान से, यज्ञ से या और कोई तपस्या से, चाहे आप जगत का दान कर दीजिए, अपने को दान कर दीजिए, तभी उनको हम बांध नहीं सकते हैं प्रेम में। यशोदा मैया ने उनको किस प्रकार से बांधा वो भावना अपने में लाने की चेष्टा करेंगी। कृष्ण छोटे से बच्चे हैं। एक दिन यशोदा मैया पलंग पर लेकर के उनको सोई थी। 4 बजे यशोदा जी उठी और बच्चे को पलंग पर रख करके नीचे चली गई और दधि मंथन करने लग गई। दधि मंथन करते करते अपने बेटे की जो बाल्य लीलाएं हैं उनका छंदोबद्ध कर गायन करने लगी। दधि मंथन करते हुए दधि के पात्र में जो मंथन चल रहा है उससे जो आवाज निकल रही मानो मृदंग का पिछला भाग, हाथों में चूड़ी और कंगन है वो मधुर करताल जैसा। अब जब कृष्ण की मैया है तो कितनी सुंदरी होंगी। सूक्ष्म वस्त्र पहनी है, दधि मंथन से पसीने के बूंदे मानो मोती झर रही हूं, केश खुल गया है, फूल उसमें से भी गिर रहे हैं और तन्मय होकर के गायन कर रही हैं। का ज्ञान कर रही हैं? गोविंद दामो धर्मांधवेति, गोविंद दामो धर्मांधवेति, गोविंद दामो तन्मय हो गई, सब कुछ भूल गई। झाड़ू देते हुए क्या करना चाहिए? गोविंद दामो धर्म धवेति, गोविंद दामो धर्म धवेति। गोपियां रसोई पका रही हैं, चूल्हे पर रोटी सेक रही हैं और मुख क्या कर रहा है, मन का चिंतन क्या कर रहा है? गोविंद दामो धर्मांधवेति, गोविंद दामो धर्मांधवेति। एक पलने पे अपने बच्चे को झुलाकती हुई और थपथपा रही है और मृदु स्वर से क्या बोल रही है? गोविंद दामो एक दूध छलक रहा है आग पर, छलक रहा है और उसे दूध ऊपर फन करके गिर रहा है और पानी ले लिया हाथ में और छीटा दे रही है और वो बोल क्या रही है? गोविंद रामो कोई अपने सूखे को सवेरे उठ करके और उसे पढ़ा रही है, अपने सुखे को पिंजड़े में रख दिया और सवेरे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय और उसे पढ़ा रही है कि अरे सुख तू बोलो तो, गोविंद भजन करना कठिन कहां है? कठिन है, अपने घर का काम करो, चित्त कृष्ण में लगाओ और ये उनका गायन करते चलो, बाधा कहाँ है ने? इस तरह से अपने जीवन के रोज चर्चा में जो कुछ भी काम हो, गोविंद दामो और इसमें रंग लगा दो, गोविंद दामो धर्मांधवेति, गोविंद दामो धर्मांधवेति। कैसा भजन अपने आप लग जाएगा। यशोदा जी अपने बच्चे की लीलाओं का स्मरण करिए, कैसे कैसे वो दधि मंथन चोरी करता है, क्या क्या नटखट का काम करता है, और तन्मय होकर के गा रही है, और वो उधर में सो रहा है, उठ गया सवेरे, मैया का टटोला और देखा जे नहीं है, मैया कहाँ गई, देखा जे इधर उधर नहीं, मैया छोड़ करके हमें चली गई, इधर उधर देखा जे मैया तो बहुत दूर में दधि मंथन कर रही, उतरे तो कैसे, छोटा सा बच्चा पलंग से कैसे उतरे, बड़ी मुश्किल से पेट के सहारे किसी प्रकार से पकड़ करके और बड़ी मुश्किल से वो उतरे। गोवर्धन धारण करने के समय में उनको परिश्रम नहीं हुई, विश्व ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं उनको नहीं हुई, रावण के साथ युद्ध करने में उनको कोई भी श्रम नहीं हुआ, और खाट से पलंग से उतर नहीं पा रहे, किस लिए, उनको अपनी सेवा चाहिए ना, जो भक्त लोग हमारी कुछ सेवा करें, वो भी सेवा के लिए ललकते हैं, जैसे भक्तों को सेवा करने में ललक होती चाहिए, कृष्ण को भी बड़ी ललक है हमारा भक्त कोई आए और हमारी सेवा करें। यशोदा जी को चाह रहे हैं ये अपनी सेवा में लगाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया, ऊ आ करके रोने लगे, आंखों में आंसू नहीं है किंतु जबरदस्ती आंखों में आंसू लाने की चेष्टा कर रहे हैं, बच्चों का अस्त्र है और रोना, जोर से रोने, किंतु यशोदा मैया को फुर्सत कहां, वो तो दधि मंथन करती हुई, गोविंद दामो एकदम तन्मय है, वो सुन नहीं रही, दधि मंथन भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, उनके मजीरे भी चूड़ियां भी बज रही, पसीने से पसीने के बूंदे भी निकल रही। कृष्ण ने देखा थे मैया तो हमारी आवाज नहीं सुनती, इसलिए और आगे बढ़ गया और जरा जोर से रोना आरंभ किया। जब एकदम निकट में चले गए तभी मैया को होश नहीं, तब उन्होंने क्या किया, निकट में आकर के रूप कैसा सुंदर, कोई भी अलंकार नहीं, रात से अभी सोए हुए ना, केश अलके इधर उधर बिखर चुके हैं, कोई आंखों में मुख की तरफ में लटक रहे हैं, और ये सब चीजें बिखर गई हैं, बिल्कुल नंग धड़ंग, सुखदेव गोस्वामी से भी अधिक कुछ भी नहीं लेंगे, और रोने से ऐसे ऐसे करने से अस्त्रों के साथ में उनका आंखों का लंबा काजल भी लग करके मुख की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही है, एक तो काले काले पर भी, एक तो करेला तीता और नीम के पेड़ के ऊपर में चढ़ गया तो और तीता हो गया, ऐसे ही कृष्ण ने नीचे जाकर के यशोदा मैया का अंचल समेत, अंचल तो गिरी गया था, ये सिर पकड़ लिया और एक हाथ से मंथनी को पकड़ लिया। यशोदा जी ने देखा जी ये कौन आ गया, उन्होंने उलट करके देखा जी अपने बच्चे को, बस प्रेम से उनका हृदय गदगद हो गया, दधि मंथन छोड़ दिया, अपने गोदी में उनको बैठा लिया और दधि मंथन छोड़ करके और उनको अपना स्तन दे दिया और अपने अंचल से ढक करके पिलाने लगी, और इतने में पासी में रखा हुआ दूध उफनने लग गया। यशोदा जी ने देखा ये दूध तो उफन अभी उफन रहा है, गिर जाएगा, ये दूध नहीं बल्कि वह जीव है, ये सोच रहा है यदि कृष्ण की सेवा में मैं नहीं लगा तो आग में जल करके मर जाऊंगा, हमें जीवन से इससे लाभ क्या, क्या लाभ यदि भगवान की सेवा नहीं कर सका, आज कृष्ण की सेवा में मैं नहीं लग सका, इसलिए जल में ही आग में ही जल मरना अच्छा है, इसलिए ये उछल करके कूद रहा है, मर रहा है, आग में जल नहीं जा रहा है। यशोदा कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, मैं पीछे अपना दूध पिलाऊंगी। यशोदा जी के स्तन में विश्व ब्रह्मांड का दूध जितना है ये सब यशोदा मैया के स्तन से आता है, और कृष्ण का पेट कितना है, सात समुद्र से भी गहरा, उसमें विश्व ब्रह्मांड का जितना दूध बहुत भविष्यत में होगा तब को भी उसको भी पेट में वो पूरा उनका पेट नहीं भरेगा, तो कृष्ण की भूख और पेट इतना बड़ा और यशोदा मैया का दूध सातों महासागरों को मिलाकर के उससे भी अधिक, न तो दूध की कमी होगी न इनकी भूख पूरी होगी, तो जन्म जन्मांतर में दूसरों की सेवा नहीं लेंगे, ऐसा सोच करके वो दूध फन रहा है, अब मरना ही अच्छा है, कृष्ण को फुर्सत नहीं, यशोदा को पिलाने से फुर्सत नहीं, तो नहीं बेटा ऐसा करके गई। जाएंगे कैसे, कृष्ण जब देखा जी मैया हमको हटा रही है, तो अभी कृष्ण का अभी भूख अभी मिटी नहीं थी, उन्होंने बंदर की भांति जैसे बंदरी को पकड़ लेता है, बंदर का बच्चा, अपने दोनों हाथों से जोर से यहां पर पकड़ लिया और पैरों को पेट के तरफ में कस लिया और मुख से भी जोर से दबा लिया उनका स्तन, छोड़ेंगे नहीं। पूतना ने 60,000 का बल रखने वाली पूतना अपने स्तन को नहीं छुड़ा सकी और यशोदा मैया जी साधारण एक गोपी, उन्होंने कहा बैठ और जोर से उनको लेकर के बैठा दिया। कृष्ण देखते ठिठक गए, अरे उनका बल इतना काम नहीं आया यशोदा जी के प्रेम के सामने, और वो रोने लगे और यशोदा जी उनको ऐसे ही बैठा दिया और बैठ करके वो रोने लगे और यशोदा जी गई दूध को लौटा और उसको शांत करके जब लौटी तो देखा जैसे ये तो बंदर कहा जाने कहां चला गया, गया कहां आखिर, ये क्रोध के मारे दांत कड़मड़ करने लगा और जो हंडी में जिसमें वो मंथन कर रही थी उसको उलाटने की चेष्टा की, किंतु हड़िया उठते तो कैसे, विश्व ब्रह्मांड को उलाट सकते हैं अपनी नजर से, किंतु यशोदा जी की रखी हुई कलश को उलटाने में असमर्थ, नहीं उलटा सके। तो उन्होंने एक लोढ़ा लिया, छोटा सा लोढ़ा, आप लोग जानती हैं कि नहीं, आजकल की स्त्रियां, पहले लोढ़ा के बिना घर कोई गृहस्थी नहीं रहता था, सील और लोढ़ा और जाता होता था, आजकल तो जाता देखने में ही स्त्रियां मूर्छित हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर हो रहा है इसलिए, जाता एक बार घुमा दो परिश्रम हो जाएगा, पहले की स्त्रियां परिश्रम करती थी, सौंदर्य उसमें आता था, आजकल तो सिर शरीर मोटा हो जाता है, स्थूल हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कितनी चीजें, कोई परिश्रम का कार्य नहीं। तो वो यशोदा जी का वो कलश पलट नहीं सका, तोड़ दिया, नीचे से पतला होता है हड़िया और ऊपर में मोटी होती है, इसलिए ऊपर से यदि तोड़ता तो नहीं टूटता शायद, किंतु नीचे से तोड़ने से छोटा सा गोल एक छेद हो गया, उसे सारी चीजें बहने लगी और कृष्ण देख रहा है वाह अद्भुत अद्भुत व्यापार। और इसके बाद में जब सब गिर गया तो मैया आएगी मारेगी, इस डर से घर में छिपने के लिए गया, वहां जाते ही देखा जिस सिक्के पर मक्खन है और उखल उल्टी हुई है, उस पर चढ़ करके और उसे निकालने लगा कुछ खाने के लिए। इतने में उसके बंदर जो बंधु है वो लोग भी जुट गए, कृष्ण ने देखा जे रामलीला में ये बंदर लोग हमारे लिए प्राणों की आहुति दी, इसलिए कुछ उपकार इनका करना है, उस समय तो मैंने खिलाया पिलाया भी नहीं, इसलिए बंदरों को मक्खन बांटना है। इतने में काग भूसुंडी के वंशज लोग आ गए, कौवे, उनको भी देने लगे और इतने मैया देखा जे घर में गया है उसके चरण के चिन्हों को देख करके और घर में जही एक बेंत लेकर के पीछे से घुसी और उनको ऐसे पकड़ने के लिए झपटी, इतने में वो कूद करके भागा। जितना कृष्ण दौड़ रहे हैं यदि यशोदा जी उतने ही दौड़े तो उसको कभी भी पकड़ सकती हैं कि नहीं, दूरी समान रहेगी, इसलिए जो पकड़ने वाला है उसका दौड़ना जरा और तेज होना चाहिए। मतलब क्या, कृष्ण यशोदा को जितना प्यार करते हैं, यदि यशोदा जी का प्यार कृष्ण पर और अधिक है तो बंधेंगे नहीं अथवा आप पकड़ में नहीं आ सकते। कृष्ण की दया हमारे ऊपर में है ये बात तो ठीक है, किंतु कृष्ण के प्रति हमारा यदि प्रेम उससे अधिक हो तो क्या होगा, कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। इसलिए यशोदा जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ी, केश के बंधन खुल गए, फूल सब गिर रहे हैं, फूल कह रहे हैं ये तुम अकेले ही नहीं हो मैया, तुम चलो हम भी तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। यशोदा जी ने कहा लो ये फूल लिया, एक लिया वो बेंत और कहा देखो, कृष्ण ने देखा अरे मैया मुझे मत मार, क्यों नहीं मारू, इसलिए कि मैंने क्या दोष किया, तुमने हड़िया क्यों तोड़ी, मैया हमने तो तोड़ा नहीं, तो किसने तोड़ा, तो आपने ही तो तोड़ा, मैंने तोड़ा, ये हंसने लगी, अच्छा मैंने कैसे तोड़ा, मैया तू जब हमको रख करके और दूध को बाल बचाने के लिए जब जा रही, तुम्हारे पैर के सोने के मोटे मोटे जो कड़ले थे ना उससे वो लग गया, इसलिए टूट गया। यशोदा जी हंसने लगी, फिर दौड़ी पकड़ने के लिए, फिर भागा। इसके बाद में वो लठिया लेकर के कहा, अच्छा देखो संभालो, ऐसे जब ही कहा तब तक कृष्ण ऐसे खड़े हो गए, उनको पकड़ लिया। कृष्ण से अधिक यदि हमारे कृष्ण की दया और प्रेम हमारे प्रति है, किंतु उनसे भी अधिक हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम हो, जब कृष्ण ही को हमारा प्रेम एक साथ जाए, यदि हमारा प्रेम बटा रहेगा घर गृहस्थी बाल बच्चा धन और ये शरीर में, कृष्ण लाखों जन्म भी पकड़ में नहीं आएंगे। और चित्त को मन को हृदय को एकाग्र करके और कृष्ण का भजन करे तो उस प्रेम से कृष्ण वशीभूत हो सकते हैं। ये भागवत का संवाद है, जो भागवत को सुन करके यदि ऐसे भाव आए तब तो भागवत का सुनना हुआ, नहीं तो नहीं सुनना हुआ। इसलिए मैं फिर इसका दोहरा रहा हूं, इन चीजों को आप लोग इसको अच्छी तरह से सुन करके वैसा ही करेंगे। कृष्ण को पकड़ लिया बाएं हाथ से और दाहिने हाथ में बेंत उठाया, मारू। उस समय कृष्ण रोने लगे, रुदंत मुहुर नेत्र जुगम मृजंतम करंभोज जुगमेन सातंक नेत्रम मुहुर श्वास कंप त्रिरेखं ककंठ स्थित ग्रीवं दामो दर भक्ति। कृष्ण रोने लगे, मैया मुझे मत मार, मुझे मत मार, तुम झूठ बोलते हो। कृष्ण के रोते हुए कहा, मैया हमारे वंश में तो कोई झूठा और चोर नहीं है, ये तुम्हारे वंश में ही कोई होगा, मायके में हो, हमारे पिताजी के घर में नहीं है। इस तरह से करते हुए और रोते भी जा रहे हैं। अच्छा तब एकदम जब पीछे आने लग गए और रोने लग गए और यशोदा जी पकड़ करके सामने ला रही हैं और दिखा रही, अब मारूं, मैया मुझे मत मार। अच्छा मारूंगी तो नहीं, एक बात तुम्हें बांध दू, जब ये शांत हो जाएगा तब इसे छोड़ देंगे। इसलिए उसको ओखल में बांधने की, उदुखल, एक ओखल और एक उदुखल, एक खल, खल मैंने चोर झूठा, ये कृष्ण एक खल है, और उदुखल एक थोड़ा सा कृष्ण की सहायता करने वाला जो ओखल है, उस ओखल में इसको बांध करके दोनों को दंड दूंगी, जो सहायता चोरी में करता है और जो चोरी करता है, ये दोनों ही दंडनीय है, ऐसा सोच करके दोनों को दोनों से बांधने की चेष्टा की। बड़ी गजब की बात, बांध नहीं सकी, दो अंगुल कंपट गया। घर की रस्सी मंगाई, गोपियां हंस रही ताली बजा रही हैं। अरे ब्रह्मा ने जिसको सिर में मस्तक पर बंधन नहीं लिखा, तुम कैसे बांध लेगी, मत बांधो छोड़ दो। यशोदा जी कहते हैं, खाए पिए रहेंगी जीवन भर बांधेगी, जीवन के बाद दूसरा भी जन्म लेकर के बांधूंगी जरूर बिना खाए पिए। सवेरे से लगी हुई है, 12 बज गया किंतु उसको छोड़ा नहीं, बांधने लगी। गोपियों कहा, अच्छा तुम अपने घर, हमारे घर की रस्सी तो समा, अपने घर से ले आओ। जोड़ती जा रही है रस्सी, लंबी होती गई मीलों, और कृष्ण की कमर बस 12 अंगुल छोटी सी, इतनी सी कमर, और सोने का चेन बंधा हुआ है, तगड़ी या क्या कहते हैं, करदनी बंधी हुई है, वो बढ़ नहीं रही कमर, किंतु तो भी ना जाने क्या बंधन है। कृष्ण तो भगवान है ना, उन्होंने सोचा मैया हमें बांध लेगी तो बच्चों के साथ में खेल नहीं सकूंगा, गायें जो दूध नहीं दे रही हैं वो डकरेंगी, अपने बच्चों को दूध देंगे, मैं थोड़ा सा जाऊं। इस तरह गोपियों की छोटी छोटी बच्चियां हमारे लिए दर्शनों के लिए चारों तरफ में भीड़ लगाई हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो वो बड़ी दुखी होंगी। यशोदा मैया हमें मत, बस उसी समय में जोग माया उनकी जो शक्ति है, वही राधा जी हैं, अलक्षित रूप में आकर के उनकी कमर नहीं बढ़ रही, रस्सी बढ़ रही है, और तभी बंधन में नहीं आ रहे। पसीने से लथपथ हो गई, सोचने की हाथ आई, वह मैं अपने पेट से निकले हुए बच्चे को बांध नहीं सकती। नारायण से उपासना करने लगी, प्रार्थना, प्रभो हमारी लज्जा रखो, नहीं तो गोपियों में मुख कैसे दिखाऊंगा, छोटे से बच्चे को नहीं बांध सकती। उस समय में कृष्ण को दया आ गई, पसीने से तरबर हो रही है मैया को देखा और मुख सूख गया है और बड़ी लज्जित हो रही है, आंखों में से आंसू छा गए हैं, बस कृष्ण को दया आई, कृपया श्री सबंदने जब ऐसा ही कोई साधक भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, उनको वशीभूत करने के लिए, तो अपना परिश्रम साधन का होना चाहिए। ध्रुव जी ने 6 महीने जो तपस्या की, कैसी की? पहले तो अन्न जल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, पत्ते खाए, पत्ते को भी छोड़ दिया, फिर पानी भी छोड़ दिया, हवा भी छोड़ दिया। कर सकते हैं हम लोग? हमारे लिए कठिन है। अरे एकादशी के दिन में हम फल लेकर के, दूध लेकर के भी नहीं एकादशी कर पाते हैं, तो और क्या कोई साधन करेगा? इसलिए वैसा यदि कठोर साधन हो, उसको देख करके कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न होने से उनकी माया शक्ति हट जाएगी। इसलिए पहली अंगुल है क्या? साधकों की साधना। कृष्ण के लिए सब कुछ करेंगे। नारद जी ने देखा जी कैसी तपस्या की, प्रहलाद महाराज जी ने कैसे की, ध्रुव ने कैसे की, ऐसे हम भजन करेंगे। और आजकल के दिनों में, अभी कुछ दिन हुआ, 500 वर्ष पहले की बात, रूप जी, सनातन गोस्वामी जी और ये सब षड़ गोस्वामी जी, आप लोग उतना नहीं जानते हैं, कैसे उन्होंने भजन किया। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानिक, संख्या पूर्वक नाम, 1-1 लाख नाम प्रणाम करते थे। वृंदावन में रहते थे, खाते क्या थे? कभी एक सूखी रोटी, कभी सूखा चना और कभी वो भी मना, ऐसा रह करके भजन करते थे। दिन रात सोते नहीं थे, कभी सो लिया तो 5-10 मिनट सो लिया, कभी वो भी नहीं सुआ, और दिन रात भगवान की चिंता में लगे रहते। तब तो भगवान मिलेंगे। तो ऐसा परिश्रम और ऐसा देख करके कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तब सारा बंधन खुल जाएगा और कृष्ण उसे प्रसन्न होकर के अपने आप उसके वशीभूत हो जाएंगे। ये भागवत का संदेश है। यदि सुन करके ऐसे ही कृष्ण को वशीभूत करने की किसी में लालसा हो और ऐसा साधन हो, तब तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। अन्यथा लाख लाख चेष्टा करने पर भी, योग से, तपस्या से, देवताओं की आराधना करने से वो नहीं मिलेंगे, उपवास से भी नहीं मिलेंगे, दान से भी, पुण्य से भी नहीं मिलेंगे, ऐसे भक्ति से वो मिल सकते हैं। ये भागवत का संदेश है। शायद आज आप लोगों का भागवत संपूर्ण हो गया है और 6:30 भी बज गए हैं, कल भागवत की पूर्णाहुति होगी, आप उसके संबंध में आपको अनाउंस करेंगे। आप लोग ऐसे ही आएंगे और भागवत की प्रणाम करके, पूजा करके और पूर्णाहुति दे करके, प्रसाद कुछ ले करके आप लोगों का व्रत समाप्त करेंगे।
Thank you.